Rızasıdır. Elhamdülillahi ve kafa ve selamun ala ibadihillezine estafa amma ba'd. Fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma mena'ana en nursila bil ayati illa en kezzebe bihal evvelun. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا سبحانه. तो इस क्लास में हम सूरह बनी इसराइल की तफसील पढ़ते हैं वार्तुल कुरान जिल्द नंबर 5 से, और भी जो आयात तिलावत की गई वो आयात नंबर 59 और 60 हैं, और इनके हम मारिफ मसाइल पढ़ रहे थे पिछली क्लास में 500 सफा नंबर 500 मारिफ मसाइल। तो इसमें हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाली आयत यानी तो दूसरी आयत है ना इस मजमुए में, उसका भी एक हिस्सा कि वमा जअलना रुया अल्लती अरैना का इल्ला फितनतल लिन्नास, कि हमने जो दिखलाया आपको, ठीक है, हमने आपको जो दिखलाया वो दिखलाया, ठीक है, वो दिखलाया जो आपको दिखलाया। अरैना का इल्ला फितनतन लिन्नास, हमने जो वो दिखलाया ना, तो हमने नहीं दिखाया सिवाय इसके के फितनतन लिन्नासी, लोगों को जांचने के लिए, लोगों को फितने में मुब्तला करने के लिए। इब्तिला, इब्तिला का जो लफ्ज है उर्दू जुबान के अंदर, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी होता है जांचना, किसी को किसी आजमाइश में मुबतला करना, इब्तला में डालना, तो इस सब का एक माना है। बहरहाल हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने लिखा कि यानी शब मेराज में जो तमाशा हमने आपको दिखलाया था, ठीक है, जो तमाशा, तमाशा वो चीज होती है जो कि एक सामने प्ले हो रही हो। अब इसके लिए आमतौर पर हम इसको जो है वो बड़े नेगेटिव मीनिंग के अंदर लेते हैं कि हाँ भाई क्या तमाशा लगा रखा है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इसको एक मनफी माने में ही लें, बल्कि ये एक एक उर्दू का लफ्ज है, इसको मुस्बत माने में भी लिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर यानी शब मेराज में जो कुछ हुआ वो सब का सब एक तमाशा था, मनफी माने में नहीं बल्कि मुस्बत माने में, पॉजिटिवली इसको देखेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी और अजीम अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान अता फरमाई थी। तो शब मेराज में जो तमाशा हमने आपको दिखलाया था वो लोगों के लिए एक फितना था, आपके लिए तो वो बहुत बड़ी शान की चीज थी, लेकिन लोगों के लिए वो एक आजमाइश थी, ठीक है, बाकी लोगों के लिए। तो फरमाते हैं कि लफ्ज फितना अरबी जुबान में बहुत से मानी के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी एक मानी वो है जो खुलासे तफसीर में लिए गए हैं, यानी गुमराही, ठीक है। खुलासे तफसीर के अंदर उनमें से एक मानी दिया, तो मुफस्सरीन अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा मानी उस लफ्ज का जो के मुहक्कक हो, यानी कंफर्म्ड मानी हो अरबी जुबान के उस लफ्ज का, और जो के सियाक व सबाक से के खिलाफ ना जाता हो, शरीयत के किसी उसूल के खिलाफ ना जाता हो, तो उस मानी को जो है वो अपनी तफसीर में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसे मानी में इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी लफ्ज को कि जो कि उसका अरबी जुबान में मानी हो ही ना, ठीक है, जो अरबी जुबान में उसका मानी हो ही ना, उसके लिए तफसीर को उसको तफसीर में इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसे मानी को। लेकिन जो मानी होते हैं किसी अल्फाज के, एक से ज्यादा मानी भी होते हैं, उनको फिर उनमें से किसी को इस्तेमाल किया जा सकता है एज लॉन्ग एज के वो जरूरियात दीन के खिलाफ ना जाता हो। ठीक है, तो खुलासे तफसीर में मानी कौन से लिए गए, यानी हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने गुमराही के मानी लिए लफ्ज फितने के। एक मानी आजमाइश के भी आते हैं, यानी किसी को आजमाना, किसी को टेस्ट करना। ठीक है, और एक मानी किसी हंगामे और फसाद के बर्पा होने के भी आते हैं। हंगामा और फसाद ये भी कि भाई बहुत बड़ा फितना हो गया भाई, ये तो यानी वहां पे लोगों ने फितना मचाया हुआ, फितना मचाया हुआ है, उर्दू जुबान में कहते हैं ना फितना मचाया हुआ है, तो क्या मतलब होता है उसका, हंगामा मचाया हुआ है, फसाद मचाया हुआ है, तोड़ फोड़ मचाई हुई है। ठीक है, यहाँ इन सब मानी का इहतमाल है। ठीक है, यानी पहला मानी भी हो सकता है गुमराही, आजमाइश के मानी भी हो सकते हैं, और हंगामा और फसाद के मानी भी हो सकते हैं। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन और मुआविया रजी अल्लाह तआला अन और हसन रहमतुल्लाह अलैह और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह वगैरह आइमा तफसीर ने इस जगह फितने से मुराद यही आखिरी मानी लिए हैं। ठीक है, और फरमाया कि ये फितना इर्तिदाद का फितना था। फसाद तो फसाद वाला मानी। ठीक है, तो अगर ये आखिरी मानी से मुराद हजरत की यहाँ पर हंगामा और फसाद वाला मानी है, तो क्या मतलब इसका हंगामा और फसाद वाला मानी, कि भाई हंगामा क्या हुआ था कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने सुबह होने के बाद लोगों को बताना शुरू किया कि मैं मेराज के ऊपर गया था, मैं बैतुल मुकद्दस में चल करके, यानी एक एक सवारी पे बैठ करके बैतुल मुकद्दस तक गया, फिर वहां से दूसरी किस्म की एक सवारी पे बैठ करके मैं मेराज के ऊपर गया, तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, हंगामा बर्पा कर दिया उसके ऊपर। है ना, जिस तरह से एक क्राउड जो होता है ना, वो जब बहुत सारे मिल करके एक साथ बात करना शुरू कर देते हैं, ऐसा लगता है कि बड़ी हंगामा हो गया है कोई। और फसाद से क्या मुराद, फसाद से मुराद दीनी फसाद, ईमानी फसाद। ठीक है, तो फरमाते हैं कि ये फितना इर्तिदाद का था। इर्तिदाद का मतलब क्या होता है कि कोई शख्स जो पहले मुसलमान था वो मुर्तद हो गया, मुर्तद हो गया यानी वो लौट गया अपने कुफर के अंदर। ठीक है, तो फरमाया कि ये फितना इर्तिदाद का फितना था, कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज में बैतुल मुकद्दस और वहां से आसमानों पर जाने और सुबह से पहले वापस आने का जिक्र किया, तो बहुत से नौ मुस्लिम न्यू मुस्लिम्स, ठीक है, न्यू कॉन्वर्ट्स जिनमें ईमान रासिख नहीं हुआ था, इस कलाम की तकजीब करके मुर्तद हो गए। ईमान उनमें रासिख नहीं हुआ था, वो इस कलाम की तकजीब करके मुर्तद हो गए। ठीक है, तो तफसीर कुर्तुबी के अंदर ये बात नकल है और वहां से हजरत ने यहाँ पर नकल करी है। तो मतलब क्या हुआ इसका, कि ऐसा भी हुआ था कि कुछ लोग इवन मक्का मुकरमा के अंदर मुसलमान हो गए। मुसलमान हो गए का मतलब क्या होता है, कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कर ली, उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ये कह दिया कि ये अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, और ये जो अल्लाह के बारे में बताते हैं वही जो है वो सच है। ठीक है, ये बात कह दी। अच्छा, मक्का मुकरमा के अंदर जो लोग मुसलमान होते थे ना, तो उनका ऐलान नहीं होता था, क्योंकि मक्का मुकरमा के अंदर जो है वो छुप करके जो है वो लोग मुसलमान होते थे। इतने मुश्किल हालात थे वहां के, इतने मुश्किल थे, सारा मक्का मुकरमा जो है वो उनकी मुखालफत करता था, और छोटा सा शहर था, कोई इतना बड़ा भी नहीं था कि जी जो है वो बात जो है वो ढकी छुपी रह जाए। बस यही एरिया था ना जो कि काबतुल्ला के इर्द गिर्द का, जो मस्जिद हराम का एरिया कहलाता है, या थोड़ा सा और आगे पीछे चले जाएं आप, बहुत ही मुख्तसर सी जगह थी ये मक्का मुकरमा। आज जो है वो आप वहां पर पैदल सफर कर सकते हैं, पूरे मक्का मुकरमा के शहर का जो इलाका है ना, वो आप पैदल कवर कर सकते हैं। अब तो पहाड़ियां वगैरह भी काट काट करके आसान रास्ते बनाती हैं, तो इस वजह से और भी ज्यादा आसान हो गया। तो अब यहाँ पर किसी का मुसलमान हो जाना, अगर उसको खास तौर पर छुपाया ना जाए, तो फिर बड़ी आसानी से दूसरों को पता चल जाए। तो लोग जो है ना वो अपनी जान की हिफाजत के लिए अपने ईमान को छुपा करके रखते थे। तो एक तो ये कि लोग जो मुसलमान हो गए यानी नबी अलैहिस्सलाम के ईमान के ऊपर ईमान ले आए वो मुर्तद हो गए, ठीक है ना। जो पहले से काफिर थे वो मुर्तद नहीं होते हैं, जो मुसलमान होते हैं वो मुर्तद होते हैं ना, वो वापस जाते हैं ना कुफर के अंदर। दूसरी बात इसके अंदर क्या है कि ईमान रासिख नहीं हुआ था। मतलब क्या कि कोई जुबान से ईमान का इकरार कर ले, इकरारुम बिल्लिसान कर ले, ठीक है, तो दिल के अंदर उसको रासिख होने में वक्त लगता है। दिल में रासिख होने में यानी तस्दीकुम बिल कल्ब, ठीक है ना, ये जो है ना तस्दीकुम बिल कल्ब, कल्ब से जो है उसकी तस्दीक करना, वो पहले मरहले के ऊपर इतना तो है कि हाँ भाई वो इनकार नहीं करता कि ऊपर से जो है वो इकरार कर रहा है और अंदर से इनकार कर रहा है। ऐसा शख्स तो मोमिन हुआ ही नहीं ना, ऐसा शख्स मुसलमान हुआ ही नहीं, ठीक है ना, कि अंदर से इनकार कर रहा है, नहीं। जो मुसलमान हो गया उसने अंदर से भी इकरार कर दिया तब वो मुसलमान हो गया, लेकिन अंदर से इकरार करना जो है ना इसके ये अंदर जो है ना गहराई होती है, इंसान के अंदर की जो चीज होती है ना उसके अंदर एक गहराई, उसके अंदर एक डेप्थ होती है, तो उसमें डेप्थ में जाने में वक्त लगता है, डेप्थ में जाने में कि हाँ भाई वाकई ये बात भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर बात के ऊपर तस्दीक करना। एक तो ना इजमाली तौर पर आपने तस्दीक कर दी कि हाँ भाई जो कह दो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, बस आप मुसलमान हो गए उसके बाद, ठीक है। लेकिन फिर जब तफसीलात खुलती हैं, जब तफसीलात खुलती हैं ना, तब हर हर तफसीली बात की तस्दीक करना, इसमें तो वक्त लगेगा ना, क्योंकि तफसीलात खुलने में वक्त लगेगा, एकदम से तो नहीं सारी की सारी तफसीलात आपके सामने पहले दिन ही आ जाएंगी कि ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, सारी चीजें एक साथ तो नहीं आ जाएंगी ना। तो जैसे जैसे आती जाएंगी आपके सामने तफसीलात, वैसे वैसे आप उनकी तस्दीक करते जाएंगे, तो आपके ईमान के अंदर फिर पुख्तगी पैदा होती जाएगी, ठीक है ना, ईमान रासिख होता चला जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो लोग थे ना इनमें ये ईमान रासिख नहीं हुआ था, तो इनके सामने जब ये मेराज की तफसील खुली ना तो इनकार कर गए, ठीक है ना, कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है कि एक ही रात में बैतुल मुकद्दस चले जाएं और उसके बाद जो है वो आसमानों की सैर करके जो है वापस आ जाएं, ये कैसे हो सकता है। तो इसकी इन्होंने तस्दीक नहीं करी, इनकार कर बैठे, तो इससे क्या हुआ कि ये कुफर में वापस चले गए। क्योंकि उम्मीद है कि आप सबको अब तक ये बात अच्छी तरीके से घोल के पिलाई जा चुकी होगी या आपने घोल के पी ली होगी कि नबी अलैहिस्सलाम की किसी एक बात का इनकार भी इंसान को काफिर बना देता है, किसी एक बात का इनकार भी काफिर, ठीक है, काफिर बना देता है। तो ईमान के लिए तो सबका इकरार, ठीक है, ये इंसान को ईमान वाला बना देता है, और काफिर बनाने के लिए सबका इनकार करना जरूरी नहीं होता, सिर्फ एक बात का इनकार करते हैं इंसान को काफिर बना देता है। इनके साथ भी यही हुआ, इन्होंने किसी और चीज का इनकार नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ मेराज वाली बात का इनकार कर दिया तो ये काफिर हो गए, ठीक है। अच्छा, ये हो गए दो पॉइंट्स। पहला पॉइंट तो क्या कि ऐसे भी थे जो कि मुसलमान हुए थे लेकिन मुर्तद भी हो गए थे, ठीक है। उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता था कि जो मुसलमान हो जाता वो फिर मुर्तद हो जाता था, नहीं, क्योंकि जो मुसलमान होता था ना तो वो छुपा करके रखता था अपने मामले को, और कोई ऐसी बड़ी आजमाइश जो है ना वो उनके ऊपर ऐसी नहीं आई कि जिसका वो जो है ना वो इंटेलेक्चुअली इनकार कर दें, ठीक है। अब देखें जो मक्का मुकरमा में बहुत सारे लोग थे जो मुसलमान हुए, बहुत ज्यादा तो नहीं थे, बस 100 एक कुछ इतनी तादाद थी टोटल मक्का मुकरमा में लोगों के मुसलमान होने की, 13 साल की मेहनत के बाद, 13 साल नबी अलैहिस्सलाम ने मेहनत करी और बस 100 से कुछ ऊपर जो है ना वो लोग मुसलमान हुए। तो इनके ऊपर जो है ना वो कैसी कैसी आजमाइशें आती थी आपको पता है ना, कौन सी वाली आजमाइशें आती थी इनके ऊपर, लेकिन ये दीन से पीछे नहीं हटते थे। कैसी आजमाइशें आती थी, उस आजमाइश को आप कौन सी वाली आजमाइशें आती थी इनके ऊपर? इंसान को अल्लाह ताला ने तीन सलाहियतें अता फरमाई, एक है जिस्म, एक है रूह, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान की एक चीज होती है जिसको के अकल कहते हैं या दिमाग कहते हैं, नफसियात कहते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं या तीन चीजें हैं, जिस्म, रूह और दिमाग, अकल, ठीक है। तो मक्का मुकरमा में जो आजमाइशें आती थी, ठीक है, तो वो कौन सी वाली किस्म से ताल्लुक रखती थी? जिस्म से ताल्लुक रखती थी या दिमाग से ताल्लुक रखती थी या रूह से ताल्लुक रखती थी? कहाँ से ताल्लुक रखती थी? बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जो आजमाइशें आई वो कहाँ से ताल्लुक रखती थी? जिस्म से ताल्लुक रखती थी, फिजिकल टॉर्चर, ठीक है ना। खुबैब रजी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जो आजमाइशें आई थी, सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर जो आई थी, अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु, यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत सौबिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, और इतनी सारे जो राइट, कैसी कैसी क्या फिजिकल तकलीफें आई थी, फिजिकल तकलीफ, ठीक है ना। ये लोग सब के सब जो है वो फिजिकल तकलीफों को सह गए। किसी का ऐसा वाकया नहीं मिलता हमें, कम से कम हमें, मैंने तो नहीं पढ़ा कि जो कि फिजिकल तकलीफों से घबरा करके जो है ना वो काफिर हो गया। हत्ता के अम्मार रजी अल्लाह ताला अन भी, कि जिन्होंने जुबान से जो है वो कुफर का कलमा पढ़ लिया था जिस्मानी अजियतों की वजह से, वो भी सिर्फ ऊपर से उन्होंने कुफर का कलमा पढ़ा, अंदर से नहीं पढ़ा, तो अल्लाह ताला ने उनको बाकायदा एक्सक्यूज किया, ठीक है ना, कि इन्होंने दिल से इनकार नहीं किया है, ये मुसलमान ही है। और अम्मार रज़ी अल्लाह जो है वो बड़े मुसलमानों में से एक थे, हालांकि ऊपर से उन्होंने कुफर का कलमा पढ़ लिया था जिस्मानी अजियतों की वजह से, ठीक है, वरना किसी और ने नहीं, वरना किसी और ने जुबानी तौर पर भी कुफर का कलमा नहीं पढ़ा, ठीक है ना, इनकार नहीं किया नबी अलैहिस्सलाम का। अच्छा, यही लोग बिलाल, खुबैब और अम्मार, यासिर, ठीक है, रजी अल्लाह तआला अन्हुम, तो इनमें से बहुत सारे जो है वो मेराज के वक्त भी जिंदा थे दुनिया के अंदर, इनके सामने मेराज का वाकया भी तो आया ना, ठीक है ना। ये कौन सी आजमाइश थी? क्या ये जिस्मानी आजमाइश थी? नहीं, ये जिस्मानी आजमाइश नहीं थी। ये किस चीज की आजमाइश थी? ये इनकी अकल की आजमाइश थी। इसमें कोई जिस्मानी तकलीफ नहीं दी जा रही थी किसी को, राइट, ये अकली आजमाइश थी कि अकल की बुनियाद पर जो है ना वो सोचो, ठीक है। तो अब जो लोग मुर्तद हो गए वो अकल वाली आजमाइश में पूरे नहीं उतर सके। क्यों मुर्तद हो गए? कोई उनको मारा किसी ने? कोई पीटा उनको किसी ने? नहीं, किसी ने मारा पीटा नहीं। अकल, अकली आजमाइश में पूरे नहीं उतर सके, मुर्तद हो गए। अच्छा, अकली आजमाइश के ऊपर 100 out of 100 किसने स्कोर किया? इस मौके के ऊपर, अकली आजमाइश के ऊपर 100 out of 100 किसने स्कोर किया? जी जल्दी से बता दें, या समझ लें कि सबसे पहले 100 out of 100 किसने स्कोर किया अकली आजमाइश के ऊपर? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। कैसे कैसे उन्होंने अकली आजमाइश के ऊपर 100% और सबसे पहले 100%? वरना बाकी भी तो पूरे उतर गए थे ना, जो मुर्तद नहीं हुए वो भी तो पूरे उतरे, लेकिन हु वॉज द फर्स्ट वन टू स्कोर 100% अकली आजमाइश के ऊपर? कैसे, ये आप बताएं। तस्दीक करके? नहीं, तस्दीक कैसे करी उन्होंने? व्हाट वॉज द प्रोसेस ऑफ डूइंग तस्दीक? प्रोसेस क्या था तस्दीक करने का? सबसे पहले तस्दीक की? नहीं, प्रोसेस क्या? अकली प्रोसेस बताइए ना, अकली प्रोसेस जिसमें कि हम सारे के सारे आजकल फेल हैं, राइट, क्योंकि मेराज के वाकये के बाद उन्होंने पहले गवाही दी। नहीं, बिलीव इन ट्रूथफुलनेस ऑफ हिज फ्रेंड, एतमाद, नहीं, जिस्मानी आजमाइश के साथ जहनी आजमाइश भी तो होती है। अच्छा, वो भी पीछे चल रही है जरा जी, ये पढ़े जरा, सबने यहाँ पे लिखा हुआ है, सब पढ़ सकते हैं इसको। मैं तो इससे भी बड़ी बात पर उनका यकीन करता हूं कि उनके पास अर्श से फरिश्ता खुदा के अहकाम लेकर के आता है। मैं तो इससे भी बड़ी बात पर यकीन करता हूं, ठीक है,
कि फरिश्ता उनके पास अर्शे इलाही से जो है वो खुदा का पैगाम लेकर के आता है, ठीक है ना। तो अगर इनको ऊपर बुला लिया उस खुदा ने, तो ये कौन सी बड़ी बात है? इसको क्या कहते हैं? लॉजिकल इन्फेरेंसिंग, लॉजिकल इन्फेरेंसिंग, अकली यानी अकली दलील कहते हैं इसको, अकली दलील, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में ना एक और भी चीज कहते हैं, इसको कहते हैं, बड़ा एक अंग्रेजी का मुहावरा है, सो कहते हैं पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। क्या कहते हैं इसको? पुटिंग टू एंड टू टुगेदर। टू एंड टू को जब आप टुगेदर कर देते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? फोर। 2 + 2 = 4, ठीक है ना भाई। जब एक चीज ऐसे है और दूसरी चीज ऐसे है, तो इन दोनों का नतीजा क्या निकलेगा? कि ये ऐसे है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब मंतिक पढ़ते हैं, ठीक है, मंतिक जो है वो एक यानी इल्म की एक ब्रांच है, ठीक है। तो उसमें ये कहते हैं कि अगर किसी चीज में से धुआं निकल रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो चीज जल रही है। अगर आपको धुआं किसी चीज में से निकलता हुआ नजर आए, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे आग लगी हुई है, ठीक है ना। अच्छा, आप अगर कहीं पे देखें, दूर कहीं देखें कि वहां पे धुआं निकल रहा है, और आपको ये बात भी पता है कि धुएं का मतलब आग होती है, तो अब इन दोनों बातों का क्या आप सम निकालेंगे, क्या नतीजा निकालेंगे इन दोनों का? कि उस जगह पे जहां पे धुआं नजर आ रहा है, वहां पे आग लगी हुई है, इस वजह से धुआं निकल रहा है, क्योंकि आपने पहले से ये बात सीखी भी थी कि धुआं निकलने का मतलब आग होता है। अब आपको किसी जगह से धुआं नजर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कि उस जगह पे आग लगी हुई है। क्या मुश्किल काम है इसको समझना? इसको अंग्रेजी में कहते हैं पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, ठीक है ना। व्हाट डिड हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु डू? ही पुट टू एंड टू टुगेदर, ठीक है ना। ही पुट टू एंड टू टुगेदर, ही यूज हिज अकल, ठीक है ना। ये अकल जो है ना, ये मौके पर इस्तेमाल की उन्होंने, मौके पर। हमारा क्या मसला है कि हमारे पास जितनी भी अकल हो ना, हम शायद एग्जाम देने जब जाते हैं ना, तो वहां तो बड़ी अकल इस्तेमाल करते हैं। मैथमेटिक्स का पेपर देने जाते हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर बड़ा हाई स्कोर करके आते हैं, वहां पर भी टू एंड टू टुगेदर से ज्यादा मुश्किल काम कर रहे होते हैं, वहां तो बड़ी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। मैथ के अंदर बड़े हाई नंबर्स लेकर के आ रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू लाइफ, जब हमारी जिंदगी का मामला आता है ना, वहां पर हम 2 + 2 भी नहीं कर पाते हैं, 2 + 2 भी नहीं कर पाते हैं, 2 and 2 together भी नहीं कर पाते हैं, और फेल हो जाते हैं, हर इम्तिहान में फेल हो जाते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर जो दुनिया, पूरी दुनिया जहान को एक मसला पेश आया था आज से 2-3 साल पहले, पूरे दुनिया को एक मसला पेश आया था कोरोना वायरस का, ठीक है ना। तो क्या क्या हुआ फिर कोरोना वायरस के जमाने में, याद है? भूल गए? या कुछ लोग बहुत छोटे थे तो वो अब बड़े हुए हैं तो उनको नहीं याद होगा, बाकी सब तो बड़े ही थे ना। कोरोना में क्या हुआ था? है कराची के रहने
अरे
वालों, उनसे पूछो कि कोरोना में कराची में क्या हुआ था, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, राइट, लाहौर, सब में, सब लोगों से पूछे कभी क्या हुआ था कोरोना के अंदर, तो अस्पताल भर गए थे, है ना, अस्पताल भर गए थे कोरोना के बीमारों से, ठीक है ना। वो जो बीमार थे वो कहाँ से आते थे, ये भी जल्दी से बता दें। ये जो अस्पताल भर गए थे कोरोना के जमाने में, ये कौन से वाले अस्पताल भरे थे और ये बीमार कहाँ से आते थे, ठीक है। हमारे यहाँ कराची में सबसे बड़ा जो अमीरों का अस्पताल है ना, वो आगा खान हॉस्पिटल कहलाता है, आगा खान हॉस्पिटल, ठीक है ना, वो भर गया था। वहां पे बोर्ड लगा दिया था इन्होंने कि भाई नो मोर पेशेंट्स, वी डोंट हैव एनी मोर स्पेस, ठीक है ना। तो ईदी के जो मियत खाने थे, ईदी है ना, ईदी ट्रस्ट, वो नहीं भरे। ईदी के जो एम्बुलेंसों के जो, वो जब कराची के अंदर फसाद होते थे, लोग जो है वो मारे जाते थे, तो ईदी के एम्बुलेंस जो है वो हर वक्त उसके सायरन आते रहते थे, आवाजें आती रहती थी, और मियत खाने भर जाते थे, ठीक है ना। लेकिन कोरोना के जमाने में कोई जो कच्ची बस्तियां थी, झोपड़ियां थी, गांव देहात थे, गलाजत के ढेर जहां पर होते हैं, मास्क लगाना तो उसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, है ना भाई। कलकत्ता में क्या हाल है इंडिया वाले जानते हैं, मुंबई के ऐसे इलाकों में क्या हाल है इंडिया वाले जानते हैं, हम भी जानते हैं, कराची में भी, पाकिस्तान में भी ऐसे इलाके हैं, ठीक है ना। वहां पे कुश्तों के पुश्ते लगे, कुश्तों के पुश्ते का मतलब ये होता है लाशों के अंबार लगे कि भाई कोरोना आ गया है, और सिंस कोई जो है वो नहीं हो रही है, प्रिकॉशनरी मेजर्स कोई नहीं लिए जा रहे हैं, तो लोग कोरोना से मर रहे हैं, मर रहे हैं, मर रहे हैं, अस्पताल जाने की फुर्सत नहीं है किसी के पास, ऐसे ही मर जाते हैं क्योंकि वो लोग अस्पताल को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, राइट। क्या हुआ ऐसा? नहीं हुआ, ठीक है ना। उसी तरीके से हम तो बस यही दो तीन बातें करते हैं, ठीक है ना। जब एयरपोर्ट पर होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग करो, ठीक है। और जब जहाज के अंदर बैठते हैं तो वहां पर भी एयर होस्टेस सर पे सवार, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, ठीक है। लेकिन जब खाना आता है तो फिर सारा का सारा प्लेन मास्क उतार देता है, पूरा का पूरा प्लेन मास्क उतार देता है। और उस वक्त जो है ना, ना वो आपकी एयर होस्टेस आके कह रही होती है कि मास्क लगाओ, उसने उसने खुद मास्क लगा, उसने भी खाना खाना है ना आप, उस वक्त मास्क नहीं। अब उधर उस वक्त कोरोना वायरस किधर चला गया, कहाँ चला गया है कोरोना वायरस, राइट। तो क्या था ये, वॉजेंट इट पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, राइट। क्या ये, क्या इसमें कोई आपको मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट होने की जरूरत थी, क्या इसके अंदर आपको जो है वो पीएचडी डॉक्टर होने की जरूरत थी, इन दो बातों का जवाब देने के लिए क्या चीज चाहिए आपको, प्योर सिंपल लॉजिक, अकल, अकल का इस्तेमाल, बल्कि रियल लाइफ के अंदर अकल का इस्तेमाल किसने किया, राइट। किसी ने किया नहीं, जिसने किया भी ना उसने भी डरते डरते किया थोड़ा सा, बस ऐसी जैसे कि हाँ यार बस बात तो समझ में नहीं आती, लेकिन फॉलो वही किया जो कि मीडिया में बताया जा रहा था, राइट। जो कुछ मीडिया में बताया जा रहा था आज भी वो लोग वही कर रहे हैं जो मीडिया में बताया जा रहा है, और इसी तरीके से तमाशे आज भी चल रहे हैं, राइट। पीपल आर नॉट एबल टू पुट टू एंड टू टुगेदर, सही है। तो अबू बकर सिद्दीक रजील तआला ने क्या किया था, ही पुट टू एंड टू टुगेदर। मैंने कहा भाई जब आसमान से मेरे पास एक फरिश्ता मेरे नबी अलैहिस्सलाम के पास पैगाम लेकर के आता है और मैं उसके ऊपर यकीन कर लेता हूं, तो फिर इसमें क्या मसला है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। यू किसी के समझ में, तो कुछ नहीं, डायरेक्ट मैसेज में पता भी किसी को नहीं चलेगा कि आपका नाम है, ठीक है। तो ये जो है ना, पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, ये हम क्यों नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, क्या मसला है हमारे साथ, ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं किया उस वक्त, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सामने थे और जो है वो आप सरम की तकजीब की बात हो रही थी, इस वजह से वो काफिर हो गए, वो मुर्तद हो गए, मुर्तद कहलाए वो, ठीक है ना। अब हमारा अल्लाह का एहसान है हमारे ऊपर, है कि नहीं है हमारे ऊपर, एक एक अंदाज से देखा जाए तो हम जैसों के ऊपर तो ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे सामने नहीं, हम जैसों के लिए, ठीक है ना, जो कि अपने अकल को इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, या जो कि बस बेवकूफी के और जिद और अनानियत के हम इंतहा पे पहुंचे हुए हैं, क्या हमारे ऊपर अल्लाह का ये एहसान नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम हमारे जमाने में नहीं होते हैं? क्योंकि अगर नबी अलैहिस्सलाम हमारे जमाने में होते तो हम क्या करते, हमने तो इनकार ही करना था ना, हमने तो तकजीब करनी थी नबी अलैहिस्सलाम की। वो तो शुक्र है कि मौलवी लोग हैं तो उनकी तकजीब करके हम काफिर नहीं बन जाते, ठीक है ना। उनकी तकजीब, उनके साथ जो हम तमाशे करते हैं तो हम मुर्तद नहीं बनते, ठीक है ना। वो तो बहुत तफसीलात हैं फिर उनकी भी, तकजीब किस तरह की हो, वो भी नबी अलैहिस्सलाम की तकजीब अगर कोई करता है तब मुर्तद बनता है, खाली एक मौलवी की तकजीब करने से मुर्तद नहीं बनता। हमारा क्या बनता अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 21वीं सदी के अंदर हमारे सामने मौजूद होते हैं, ठीक है। तो बड़े लोगों को जो है ना वो ख्वाब में ज्यारतों को भी बड़ी शौक होता है, नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शौक है ख्वाब में। अल्लाह के बंदे अपनी असलाह तो पहले करो, पहले अपनी जिद को तो खत्म करो, राइट। पहले जो है वो अपनी अकल शरीफ को जो है वो इस्तेमाल करने की थोड़ा सी मेहनत तो करो,
थोड़ा सा कोशिश तो करो अपनी अकल शरीफ को इस्तेमाल करने की। फिर नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की बात करना, ठीक है। अच्छा, ये हो गई तीसरी बात। फिर फितना इर्तिदाद का था। ये जो इर्तिदाद का फितना होता है ना, ये होता है जब कोई इंसान खुल करके नबी अलैहिस्सलाम का इनकार कर देता है ना, तो कुफ्रे जहल कहते हैं या कुफ्रे जहूद भी कहते हैं, यानी जाहिरी तौर पर वो इंसान काफिर हो जाता है, उसको इर्तिदाद कहते हैं, ठीक है। एक और किस्म का कुफ्र है कि जिसके ऊपर हम भी आजकल बहुत तफसील के साथ, यानी बाकायदा किताब को फॉलो करके बात कर रहे हैं, वरना पहले भी बात करते रहते थे बहुत उसके ऊपर, लेकिन अब तो बाकायदा एक किताब फॉलो कर रहे हैं जुम्मे की मजलिस के अंदर भी और बुध की क्लास के अंदर भी, ठीक है। तो वो वाला जो कुफर होता है वो होता है कुफर निफाक। कुफर निफाक जो होता है ना, ये इर्तिदाद का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता, इर्तिदाद का लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इर्तिदाद उस कुफर को कहते हैं जो कि खुल करके किया जाए, उसके लिए इर्तिदाद का लफ्ज इस्तेमाल होता है। मुनाफिक जो होता है या कुफ्र निफाक का जो शिकार होता है, वो तो छुप करके काफिर होता है, खुल करके काफिर नहीं होता, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे याद रखें, समझ लें, लिख लें अपने पास कम से कम, ठीक है। अच्छा, फितने दज्जाल का जो जमाना है उसके अंदर जो इर्तिदाद है ना, वो कुफ्र निफाक वाला इर्तिदाद, ठीक है, कुफ्र निफाक वाला इर्तदाद, खुल करके काफिर होना ये नहीं होगा, सिवाय इसके के कई हजार में कोई एक शख्स जो है ना, वो शायद खुल करके अपने कुफ्र का ऐलान करे, ठीक है, एथियस्ट हो जाए या ईसाई हो जाए या यहूदी हो जाए, ये लाखों में एक, ठीक है। लेकिन कुफ्र निफाक का शिकार, ये अल्लाह हिफाजत फरमाए तो वो बचेगा इससे, वरना मुमकिन नहीं, कुफ्र निफाक से बचना मुमकिन नहीं, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर से इंसान जो है वो मुसलमान होता है, मुसलमानों वाले आमाल कर रहा होता है, हत्ता के अपने आप को मुसलमान समझ भी रहा होता है, ये नहीं कि वो काफिर हो गया, ऊपर से जो है वो इजहार नहीं कर रहा अपने कुफर का, अंदर से उसको पता है कि वो काफिर हो गया, नहीं, वो अपने आप को मुसलमान समझता भी रहेगा, अपने आप को मुसलमान ही समझता रहेगा, लेकिन फिर भी वो काफिर हो, ठीक है। उम्मीद है कि आपके पास ईमान और कुफ्र वाली किताब पहुंच चुकी होगी, वहां पे ये लिखा लिखा हुआ भी है, बेशक वो अपने आप को मुसलमान समझता रहे, ठीक है। तो कुफ्र निफाक में है ना, ये अलग किस्म की चीज होती है, और इस जमाने में हम कुफ्र निफाक ही से हमारा वास्ता पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो ये इन्होंने फरमाया ना कि अगला अगला पैराग्राफ जो हमने अभी पढ़ा पढ़ा नहीं है ना, तो उसमें लिखते हैं कि इसी वाक्य से ये भी साबित हो गया कि लफ्ज़ रुया अरबी जुबान में अगरचे ख्वाब के मानी में भी आता है, रुया का जो लफ्ज़ है वो अगरचे ख्वाब के मानी में भी आता है अरबी जुबान में, और रआ यरा, जो लोग थोड़ी सी भी ग्रामर पढ़ चुके हैं उनको पता है कि रआ यरा का मतलब होता है देखना, ठीक है ना, तो वो यानी जागते में देखने के लिए भी इस्तेमाल होता है, और रोया का लफ्ज ख्वाब के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि कुरान मजीद में और बहुत सारे मकामात के ऊपर लफ्ज रोया जो है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब, ठीक है ना, तो उसके लिए रोया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और वो ख्वाब ही वहां पे कोई अलग से नहीं है कि रोया फिर नाउ सोते हुए जो है वो मैंने देखा, नहीं, सिर्फ रोया का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इस काला यूसुफ ले अभी ही या अबती इन्नी रई तो अहद अशरा का कबन व शमस व कमर और रई तो हूँ बीसा जिदीन, ठीक है, तो वहां पर भी रोया रा यरा रई तो हूँ बीसा जिदीन, वही वाला लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा अपने बाप से, अपने वालिद मोहतरम से, तो उन्होंने यही नहीं कहा कि बेटा ये तो बता दो कि तुमने जागते हुए देखा था या तुमने सोते हुए देखा था, नहीं, वो सुन करके ही समझ गए कि ये सोते हुए भी देख में ही देखा था, ठीक है। वो वही फरमा रहे हैं कि अगरचे लफ्ज रोया अरबी जुबान में ख्वाब के मानी में भी आता है, लेकिन इस जगह मुराद ख्वाब का किस्सा नहीं, क्योंकि ऐसा होता तो लोगों के मुर्तद हो जाने की कोई वजह नहीं थी, ख्वाब तो हर शख्स ऐसे देख सकता है, ठीक है,
ख्वाब तो हर शख्स देख सकता है भाई, आप ख्वाब नहीं देखती कि कभी जो है वो आप अमेरिका पहुंची हुई हैं, कभी जो है आप मक्का मुकरमा पहुंची हुई हैं, कभी जो है वो आप जो है वो सातवें आसमान पर पहुंची हुई हैं, कभी जो है आपकी मुलाकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो रही है, कभी आपकी मुलाकात जो है वो अल्लाह ताला को लोग ख्वाब में देख लेते हैं भाई, राइट। ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़्यारत हो जाती है, ठीक है ना, और ख्वाब में जो है वो आप हवा में उड़ रही हैं, पानी के जो है वो तह में पहुंची हुई हैं। यानी ख्वाब क्या है भाई, ख्वाब तो हर बंदा देख सकता है, ठीक है। तो अब नबी अलैहिस्सलाम अगर आकर के कहें कि भाई मैंने ख्वाब में देखा है ये सब कुछ, तो फिर किसी को क्या पड़ी हुई है कि वो नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करे, ठीक है ना। तो वही फरमा रहे हैं कि ख्वाब तो हर शख्स ऐसे देख सकता है, ऐसा ऐसा ख्वाब देख सकता है, बल्कि इस जगह मुराद रुया से एक वाकया अजीबा का बहालत बेदारी दिखलाना है। बहालत बेदारी यानी बेदार थे नबी अलैहिस्सलाम, जागे हुए थे, ठीक है। आयत मस्कूरा की तफसीर, अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल प्योर कॉमन सी लॉजिक है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की बात करी होती तो किसी को क्या पड़ी हुई थी कि नबी अलैहिस्सलाम का इनकार करना शुरू कर दें और मुर्तद हो जाए, ठीक है। तो भाई नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की बात ही नहीं करी, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं बेदारी में गया हूं, ये सारा काम मैंने जागती हालत में किया है, इसके ऊपर उन लोगों को मसला था, ठीक है। आयत मस्कुरा की तफसीर में बाज हजरात ने उसको वाकया मेराज के सिवा दूसरे वाकयात पर भी महमूल किया है, ठीक है, यानी कि भाई ये जो है ना ये ख्वाब का मामला है, कुछ हजरात ने ये भी कहा कि ये ख्वाब का मामला है, यानी ये बाकायदा इल्मी इख्तलाफ है, ये इल्मी इख्तलाफ है इस लफ्ज के ऊपर। एक तो ये है कि भाई मेराज का वाकया भी और दूसरे वाकयात भी, ठीक है, लेकिन एक इख्तलाफ ये भी है, ठीक है, कि नबी अलैहिस्सलाम ये जो यानी यहाँ पर जो बात हो रही है ना, ये ख्वाब की बात हो रही है, हत्ता कि ये भी इख्तलाफ है कि मेराज का वाकया जो है ये ख्वाब में हुआ, ठीक है, ये भी ऐसा भी ओपिनियन रखने वाले उलमा मौजूद हैं, ठीक है ना, मगर मजमूई एतबार से यहाँ पर मुंतबिक नहीं होते यहाँ पे, यानी ये जो बात है ना ये आप भी अप्लाई नहीं होती मजमूई एतबार से, इसलिए जम्हूर ने वाकई मेराज ही को इस आयत का महमल करार दिया है। यानी ये आयत जो है ना, ये जम्हूर ने यानी मेजोरिटी ऑफ द उलमा ने, हम किस दीन को फॉलो करते हैं, अहले सुन्ना वल जमा, ठीक है ना, ये जो है ना ये फिरका है जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि यही नाजी फिरका होगा, अहले सुन्ना वल जमा, ठीक है ना, और जो खाली होंगे ना अहले कुरान, भी हम हदीस को नहीं मानते, वो अहले सुन्ना वल जमात में नहीं है, या रवाफिज जो कि सहाबा को नहीं मानते यानी सहाबा की जमात को नहीं मानते, वो अहले इस्लाम में शामिल नहीं होंगे रवाफिज, ठीक है। हम क्या हैं, अहले सुन्ना वल जमात, ठीक है ना, कि भाई हम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की रोशनी में कुरान को समझेंगे, और जो जमात का यानी उलमाए कराम की जमात का जिस बात के ऊपर इजमा हो जाएगा, हम उसको भी दीन का हिस्सा समझेंगे, उसको भी दीन का हिस्सा समझेंगे, ठीक है। जैसे सहाबाए कराम का इजमा हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम के ये जो मानेईन ज़कात थे, जिन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम मरकज में ज़कात नहीं भेजेंगे क्योंकि मरकज में अब नबी अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है, सहाबा कराम का इजमा हो गया कि उनसे भी हम जिहाद करेंगे, मुर्तद हो गए वो लोग, उनसे हम जिहाद करेंगे, ये इजमा हो गया। तो सारे सहाबा ने इस इजमा की बुनियाद पर बाकायदा जिहाद किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब से भी इसी तरीके से जाके जिहाद किया, हालांकि वो लोग तो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की अजानें देते थे, ठीक है ना, एक बात में उन्होंने इख्तलाफ किया था, उनसे जाकर के जिहाद किया और कितने हजारों की तादाद में जो है वो काफिर भी जो है मारे गए, और 1,500 तो मुसलमान भी शहीद हुए उस वाले जिहाद के अंदर, ठीक है। तो जम्हूर ने वाकई मेराज ही को इस आयत का मुहमल मखमल करार दिया, यानी इसका ये जो आयत है ना ये मेराज के बारे में ही है, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, सेल्फी कौन लोग होते हैं जो सेल्फीज लेते हैं, नहीं, सलफी वो लोग होते हैं जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम तो सलफ को फॉलो करते हैं, यानी सलफ कौन से 3 जनरेशन है,
सहाबा कराम की, ताबईन की और तबा ताबईन की, ठीक है, तो क्लेम करते हैं खाली सलफी हैं और सलफ को फॉलो करते हैं और किसी को फॉलो नहीं करते, लेकिन वो अपने आप को अहले सुन्ना वल जमात वो लोग भी कहते हैं, क्योंकि जो सलफ में सबसे पहले तो सहाबा कराम की जमात ही आ जाती है ना, तो सहाबा कराम का जिस बात पे इजमा हो गया और कहते हैं कि हाँ जी हम उसको मानते हैं, अब वो माने ना माने वो और बात है, लेकिन उसूलन तो यही कहता है ना कि भी सहाबा का इजमा हो गया, ताबीन का इजमा हो गया, तबा ताबीन का इजमा हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो एक आध और को भी मान लेते हैं, इब्न कय्यम जौहरिया रहमतुल्लाह अलैह को या इमाम शेखुल इस्लाम हज़रत तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, वो तो सलफ में नहीं आते, ठीक है, लेकिन उनको भी मान लेते हैं, बहरहाल वो सब एनी वे, ये कुछ नहीं है, ये सलफी कौन लोग होते हैं ये तमाशा है बस, ठीक है ना, बस ये खाम मुकाबले है ना वो बेवकूफ़ी की बातें और सारे सब कोई ऐसे होते हैं, बहरहाल वो मुसलमान ही होते हैं, उनको काफिर करार देने की कोशिश ना कीजिएगा, मुसलमान ही होते हैं लेकिन बड़े कन्फ्यूज किस्म के, यही समझते हैं, ठीक है, बात मुकम्मल हो गई, शायद की तफसीर हमने पढ़ के मुकम्मल कर ली, बहरहाल अब इसके ऊपर एक बात तो वैसे है जो कि मर्दों की क्लास में थोड़ी बहुत हुई थी, औरतों की क्लास में उसकी कोई इतनी रेलेवेंस भी नहीं, लेकिन ये जो इख्तलाफ होते हैं ना, ठीक है, कि भाई ये इल्मी इख्तलाफ है कि जी रोया का लफ्ज यहाँ पर बेदारी के लिए आया, कि ये रोया का लफ्ज जो है वो क्या कहते हैं ख्वाब के लिए आया, ठीक है, ये वाकया जो है सॉरी ये जो आयत है ये मेराज के वाकये के ऊपर महमूल होती है, या ये आयत जो है वो मेराज के अलावा दूसरे वाकयात के ऊपर महमूल होती है, ये इल्मी इख्तलाफात, ठीक है ना, तो इनकी इल्मी दलीलें होती हैं और इल्मी इख्तलाफात जो है वो उम्मत में रहे हैं हमेशा से रहे हैं, ठीक है, सहाबा कराम के जमाने में भी इल्मी इख्तलाफ मौजूद था कि नबी अलैहिस्सलाम ने, जैसे मिसाल के तौर पर एक है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि उस वक्त तक असर ना पड़ना जब तक तुम बनू कुरैजा के किलों तक ना पहुंच जाओ, खैबर तक ना पहुंच, या जो भी खैबर तो नहीं था वो बनू कुरैजा के किले वहां तक ना पहुंच जाओ, तो सहाबा कराम जब रास्ते में जा रहे थे तो असर का वक्त जो है वो खत्म होने लगा, तो उनमें इख्तलाफ हो गया, कुछ सहाबा ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की ये मुराद नहीं थी कि हम जो है वो असर ना पड़े कजा कर दें असर को, ठीक है, ये मुराद की थोड़ी थी, बस ये मुराद थी कि जल्दी करो, तो वो हमसे गलती हो गई, हमसे जल्दी नहीं हो सकी, असर की नमाज अब कजा हो रही है, सूरज जो है वो गुरूब हो रहा है, तो हमें असर पढ़ लेनी चाहिए, तो उन लोगों ने असर पढ़ ली, रास्ते में पढ़ ली, हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब तक वहां ना पहुंच जाना उस वक्त तक असर ना पड़ना, ठीक है, तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की मुराद को ऐसे समझा कि नबी अलैहिस्सलाम की मुराद थी जल्दी करो, ये नहीं थी कि असर कजा कर दो, उन्होंने उधर ही असर पढ़ ली, फिर उसके बाद जो दूसरी जो जमात थी सहाबे कराम में दो ग्रोह बन गए थे ना उसी वक्त ऑटोमेटिकली, कोई कोई बाकायदा दो लीडर नहीं थे वहां पे, लेकिन दो जमातें बन गई, एक का ओपिनियन ये हुआ कि नहीं नबी अलैहिस्सलाम ने जो जैसे कहा है बस वैसे ही अब हम जो है ना वो असर कजा कर देंगे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बात के ऊपर अमल करेंगे, वहां पहुंच करके असर पड़ेंगे चाहे कजा हो जाए, उन्होंने नहीं पढ़ी, यानी फर्ज नमाज कजा कर दी उन्होंने, बाद में नबी अलैहिस्सलाम के पास बाकायदा पेश हुए और इस मसले को पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, ठीक है, अब अल्लाह के नबी का ये मनसब है, ये उनका रोल है कि जो गलत काम करे उसके ऊपर उसकी नकीर की जाए, उसकी इसलाह की जाए, राइट, और अगर नबी ये काम नहीं करते तो इसका मतलब खाली दो ही हो सकते हैं, एक ये कि खुदा ना खास्ता नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला सुमा नाउज बिल्ला नबी अलैहिस्सलाम ने अपना काम नहीं किया, एक इसका मतलब ये होता है जो कि ऑफ कोर्स मुमकिन ही नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपना काम नहीं किया, दूसरा मतलब इसका क्या होता है पूछना तो चाहिए था लेकिन टाइम खत्म हो गया क्लास के, इस वजह से नहीं पूछ रहे, दूसरा इसका मतलब ये होता है कि वो चीज़ गलत थी ही नहीं, वो चीज़ गलत थी ही नहीं, जब भी तो नबी अलैहिस्सलाम ने इसलाह नहीं करी, जब भी तो नबी अलैहिस्सलाम ने नकीर नहीं करी, ठीक है, तो उलमा ने फिर इसका नतीजा यही निकाला क्योंकि उलमा भी तो मुसलमान ही है ना, वो ये कोई थोड़ी कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपना काम नहीं किया, तो उन्होंने इसका यही नतीजा अखज किया सिर्फ कि वो गलत थी ही नहीं,
यानी ये जो इल्मी इख्तिलाफ होता है ना मुसलमानों के दरमियान, ये गलत होता ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें ज्यादा से ज्यादा इतना होता है कि एक जमात जो है वो यानी ज्यादा सही होती है, दूसरी जमात जो होती है वो कम सही होती है, बस इतना सा इसमें फर्क होता है, ठीक है। तो इल्मी इख्तिलाफ तो हमेशा से उम्मत में रहा है, इसका कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर भी ये इल्मी इख्तिलाफ की बात हो रही है कि भी कुछ ने ऐसे कहा लेकिन कुछ ने ऐसे कहा, ठीक है। अब इसमें एक जो नुक्ता था जो कि मर्दों की क्लास में थोड़ा सा बयान हुआ था, वो ये था कि इल्मी इख्तिलाफ तो हमेशा से रहा है और अभी भी है, लेकिन इस इल्मी इख्तिलाफ में जो है ना वो आज के दौर में एक चीज ऐड हो गई है, एक चीज शामिल हो गई है। वो क्या है कि इल्मी इख्तिलाफ जो है ना वो अगर कोई कर रहा है तो, और वो इल्मी इख्तिलाफ ऐसा कर रहा है जो कि जमहूर से हट करके है, जमहूर की एक राय है, मेजोरिटी ऑफ उलमा की एक राय है, और ये जो है ना वो मेजोरिटी ऑफ उलमा की राय से हट करके अपनी एक राय दे रहे हैं, क्योंकि वो भी आलिम है, क्योंकि उनके पास भी कोई इल्मी दलील है, ठीक है, तो वो हट करके एक बात कर रहे हैं अपनी, ठीक है। तो इस दौर के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा इसके अंदर एक और भी चीज देखनी पड़ जाती है, वो ये है कि भाई ये जो इल्मी इख्तलाफ किया जा रहा है ना, तो इसके पसे मंजर में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो दुश्मनाने दीन है वो पीछे से ये इल्मी इख्तलाफ करवा रहे हैं, दुश्मनाने दीन ये इल्मी इख्तलाफ करवा रहे हैं, ठीक है ना। ये महज एक इल्मी इख्तलाफ नहीं है, जैसे कि सहाबा में था, सहाबा के पीछे दुश्मनाने दीन नहीं थे, उसी तरह हमारे अकाबरीन असलाफ और इवन हमारे अपने उलमाए देवबंद में इल्मी इख्तलाफात हुए हैं, पीछे दुश्मनाने दीन नजर नहीं आते, लेकिन और मामलात में इल्मी इख्तलाफ, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ठीक है, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने इब्तिदा जो है ना ये बहुत बड़ा आलिम दीन था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बहुत बड़ा आलिम दीन था, ये मुनाजरे करता था और शिकस्त दिया करता था, शिकस्त दिया करता था काफिरों को, ईसाइयों के खिलाफ मुनाजरे कर रहा है, आर्याओं के खिलाफ मुनाजरे कर रहा है, इतना इल्म था कि ये जीतता था मुनाजरे, ठीक है, यानी जो डिबेट्स होती हैं। लेकिन इसने इल्मी इख्तलाफ से शुरू किया और इसके पीछे अंग्रेज थे, इसके पीछे कौन थे, अंग्रेज थे, ठीक है। उन्होंने इब्तदाई तौर पर जो है ना जो इख्तलाफ होता है ना वो इख्तलाफ नजर नहीं आता, वो बहुत ही सेटल किस्म का इल्मी इख्तलाफ नजर आ रहा होता है, लेकिन चूंकि पीछे अंग्रेज थे उन्होंने फिर बिलाखिर उसको बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, और फिर वो अपने आप को ईसा अलैहि सलाम के दावे तक लेकर के आया, फिर उसके बाद आखिरी यानी नबी के दावे के ऊपर लेकर के आया, और फिर उसके पीछे जो चल रहे थे वो सारे के सारे ईमान से फारिग हो गए, काफिर हो गए वो सारे के सारे, ठीक है। उसी तरीके से ये जो क्या कहते हैं मेराज के वाकये में इल्मी इख्तलाफ, ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान ने भी इसमें इल्मी इख्तलाफ किया, सर सैयद अहमद खान भी बहुत बड़ा आलिम था, तफसीर कुरान लिखी उसने, ठीक है ना, और बहुत बड़ी इल्मी जो है वो बातें, इल्मी शख्सियत ही बकायदा, ठीक है, उसने भी इल्मी इख्तलाफ किया। लेकिन सर सैयद अहमद खान की अगर आप तारीफ उठा करके देखें, उनके जो है वो आने जाने और सारी चीजें देखें, काफिर, अंग्रेज उसके पीछे, अंग्रेज, ठीक है, बाकायदा मलका बरतानिया की जो है वो एक साल के लिए वहां पे जाकर के जो उसकी वो जो थ्रोनिंग सेरेमनी थी उसमें शामिल होने के बाद इंडिया वापस आए, तो वहां पे आकर के फिर एंग्लो इंडियन स्कूल की, और पूरा का पूरा जो काफिरों का तालीमी निज़ाम होता है जिससे कि असल में जहन साजी होती है, जिससे कि असल में जो है ना वो इन रोड्स बनाई जाती हैं आपके मुआशरे के अंदर, आपके जहन जहनों के अंदर, वो पूरा का पूरा तालीमी निज़ाम अंग्रेज ने खुद इस्टेब्लिश नहीं किया बरेसगीर के अंदर, बल्कि सर सैयद अहमद खान से इस्टेब्लिश करवाया, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान ने भी इल्मी इख्तलाफ किया, तो क्या वो इल्मी इख्तलाफ जो है वो वैसे ही इल्मी इख्तलाफ कहलाएंगे जैसे कि पुराने अकाबरीन ने इल्मी इख्तलाफ किया था, ठीक है, जैसे कि पुराने भी इल्मी इख्तलाफ थे, तो सर सैयद अहमद खान का भी इल्मी इख्तलाफ वैसे ही इल्मी इख्तलाफ कहलाएगा, नहीं, क्योंकि उसके पीछे अंग्रेज थे, राइट। और अंग्रेज जो है यानी जो ईसाई अंग्रेज और यूरोपियंस, ये मुसलमानों के हमनवा नहीं है, ये मुसलमानों के दुश्मन है। ठीक है, अब कोई कहे कि नहीं भी इल्मी इख्तलाफ था, पुराने जमाने में भी तो इल्मी इख्तलाफ था, हमारे बड़े बड़े अकाबरीन ने इल्मी इख्तलाफ किया, तो सैयद अहमद खान के अब हाथ धो के क्यों पीछे पड़े हुए हैं, क्यों पीछे पड़े हुए हैं? फिर निस्बत की वजह से, निस्बत की वजह से। अभी पिछले दिनों आपके साथ शेयर भी किया था ना, एक निस्बत के पत्थर तो काबतुल्ला में भी लगा हुआ है, पत्थर तो जमरात में भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसको जो है वो पत्थर मारते हैं, कंकर मारते हैं जा करके, और इसको जो है वो चूमते हैं इस वाले पत्थर को। फर्क क्या है दोनों पत्थरों में? निस्बत का फर्क है। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, सो ट्रू एज एन एलुमनाई ऑफ AMU आई स्टडीड द थ्योरी ऑफ हिम देयर, द थ्योरी ऑफ हिम देयर, मतलब क्या कहना चाहिए। बहरहाल सो ट्रू कम अज कम हमारे लिए काफी है, आपने तस्दीक कर दी, जजाक अल्लाह। तो भाई नस्बत का फर्क है ना, इधर नस्बत जो है वो अंग्रेजों से हुई हुई है, उधर नस्बत जो है वो खालिसतन इल्म के साथ हुई हुई है, नबी अलैहिस्सलाम के साथ नस्बत हुई हुई है, उन उलमाए कराम की जिन्होंने इल्मी इख्तलाफ किया था। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों मामला बराबर नहीं है, कैसे हो सकते हैं बराबर ये दोनों मामला? उसी तरह आज के दौर के अंदर भी काले गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज तो मौजूद है ना, ब्राउन अंग्रेज तो मौजूद है ना, जिनके रग रग और रेशे रेशे में जो है वो अंग्रेज की ही यानी तालीम और तरबियत और जहन और सोच, बेहतरीन तालीमी निजाम से उनको तैयार किया जाता है, राइट? अंग्रेज का जो बेहतरीन तालीमी निजाम है, जब ये अंग्रेज 1947 में चले गए, ठीक है ना, आपको पता है सारे अंग्रेज नहीं गए थे इंडिया में, तो इंडिया का पहला प्रेसिडेंट या वाइस कौन था इंडिया का, बताएं जी? इंडिया से सारे अंग्रेज चले गए थे 1947 में, लॉर्ड माउंटबेटन को छोड़ के गए थे, लॉर्ड माउंटबेटन को छोड़ के गए थे, पता है ना आपको, इंडिया वालों को। पाकिस्तान में से सारे अंग्रेज चले गए थे, किसको छोड़ के गए थे पाकिस्तान में, कौन सा अंग्रेज, कौन से अंग्रेज छूटे थे, जल्दी से बताएं, पाकिस्तानी अकाबरीन जो मौजूद है ना यहाँ पे अल्लाह के वली, वो बताएं पाकिस्तान में किस अंग्रेज को छोड़ के गए थे? इंडिया में तो लॉर्ड माउंटबेटन को छोड़ के गए थे, पाकिस्तान में कौन सा अंग्रेज को छोड़ के गए थे, पता है किसी को? नाम तो मुझे भी नहीं पता नाम तो मुझे भी नहीं पता, काम बताएं जी, डर के मारे कोई बताएगा नहीं, ना फायरवॉल में पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी वो बाकायदा गोरे अंग्रेजों को छोड़ करके गए थे, जो कि कई साल तक पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमात अंजाम देते रहे थे। और कौन सी खिदमात अंजाम देते रहे थे? पाकिस्तान की हिफाजत वाली खिदमात अंजाम देते रहे थे, जिन गोरे अंग्रेजों को, काले अंग्रेजों, ब्राउन अंग्रेजों की बात नहीं कर रहे, गोरे अंग्रेजों को छोड़ के गए थे, वो कौन सी खिदमत अंजाम दे, यही चले, यही बता दें, अगर बहुत डर लग रहा है तो यही बता दें जी, औलिया कराम यही बता दीजिए कि पाकिस्तान में जिन गोरे अंग्रेजों को छोड़ के गए थे वो कौन सी वाली खिदमत अंजाम दे रहे थे पाकिस्तान में? एडमिनिस्ट्रेशन वाली खिदमत, टू वर्क अकॉर्डिंग टू हिज रूल, अकॉर्डिंगली टू हिज रूल, यानी अंग्रेजी भी सही तरह नहीं पढ़ा सके वो लोग जी। वो जो है ना वो अपने नाइबीन ऐसे तैयार करके, जो कि पाकिस्तान जो नया मुल्क बना है ना, नया मुल्क, पहले तो वो था ओवरऑल इंडिया, तो उनके नाइबीन तो तैयार हो ही हुए थे, इंडिया के अंदर वो निजाम चलाते थे, ठीक है ना। लेकिन अब जो ये एक नया मुल्क बन गया है, जिसका के झंडा भी अलग है, जिसका के नारा भी अलग है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, राइट, जिसका नारा भी अलग है, झंडा भी अलग है, और यहाँ पे लोग जो है ना वो बड़े इस्लाम के नाम पर जो है वो आए हैं, कुर्बानियां दे दे करके आए हैं, अपने बच्चे मरवा के आए हैं, अपनी औरतें जो है वो कटवा के आए हैं, है ना। अब यहां पर जो हमारी नियाबत, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, वो यहां पे कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए बंदे तैयार ऐसे करना जो कि इस बॉर्डर्स के अंदर भी हमारा काम परफेक्टली कर सकें जैसा कि हम चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए वो गोरे अंग्रेज छोड़ कर गए थे, और वो जो जब गोरे अंग्रेजों ने अपना ये काम कर दिया तो उन्होंने फिर जो अपनी अपना जो जो उनके पास था, क्या कहते हैं उसको, अपनी इसनाद, अपने जो तमगे, सब कुछ वो काले अंग्रेजों के, ब्राउन अंग्रेजों के हवाले किया। फिर क्या, अब हम जा रहे हैं वापस, अब हम वापस जा रहे हैं, अब हमें यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, अब हमें यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, अब हमारा काम हो गया, वी आर नॉट नीडेड हेयर एनी मोर, वी आर नॉट नीडेड हेयर एनी मोर, अब हमें यहाँ पे रहने की, अब हम जाएंगे आराम से यूरोप में जाके मजे करेंगे, या हम दूसरी जगहों में जाके मजे करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो ब्राउन अंग्रेज हैं, ये जो काले अंग्रेज हैं, तो भाई इनके तो रग रग रेशे रेशे के अंदर तो गुलामी है, रग रग रेशे रेशे के अंदर गुलामी है। तो अगर ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो ये फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अल्लाह अकल सलीम अता कर, बेवकूफी से और जो अपनी जो जो हमारे धोखा में लगा हुआ है ना, जिस दजल का हम शिकार हुए हैं, उस दजल से हमें निकलने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम कुछ कर सकें बिलाखिर, वरना इसी फरेब के अंदर ही जो है ना वो हम अल्लाह के वली बन करके अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं और कहीं नहीं जा रहे, कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अल्लाह ताला अपने सलीम अता फरमाए, बात की समझ हम उनकी तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआ अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।